लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु और उनके पवित्रतम हृदय के साथ व्यक्तिगत संबंध द्वारा सांत्वना मिले, जिससे हम विश्व के सब लोगों के प्रति करुणावान बनना सीखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। यह सच है कि परिवार अच्छा है तो समाज भी अच्छा होता है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है और यह एक आईने की तरह है जो सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। एक मजबूत और स्वस्थ परिवार जिसमें प्रेम, सहयोग और समझदारी होती है, एक बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ख्रिस्त परिवार में इन सभी सद्गुणों के साथ साथ पारिवारिक प्रार्थना की भी अपेक्षा की जाती है। बड़ौदा धर्म प्रांत के ख्रिस्तों की एक अच्छी पहचान है, जो कम संख्या में रहते हुए भी चुनौतियों के बावजूद अपने ख्रिस्त विश्वास को जीते हुए बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। फादर अभय खलखो, जिन्हें हम पहले भी सुन चुके हैं, आज हमें बड़ौदा धर्म प्रांत के ख्रिस्तों के बारे बतला रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है फादर अभय खलखो के साथ एक भेंट वार्ता, जिनके साथ बात कर रही है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
या अभी फिलहाल तो बोलेंगे, अभी दुनिया में देखेंगे तो अभी थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है बोलेंगे। अभी जनरली हम देखेंगे तो लोग भी अभी बहुत कम जाते हैं चर्च सब में, जिसको हम नॉमिनल बोलते हैं नाम के वास्ते, ये सब है। लेकिन वहाँ का ख्रिस्ती मतलब कि हमारे कैथलिक लोग कम हैं, और जो भी हैं वो लोग आते हैं, लेकिन चर्च सब तो डिपेंड करता है कहाँ है ना, वो सिटी पारिश तो चर्च तो भरा रहता है, स्पेशली संडे में, संडे सब में ना, और वीकडेज में तो मिसा नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत कम लोग आते हैं। संडे में जो सिटी पारिश है वो भरा रहता है, और जो रूरल में है, देहाती है, वो वहाँ कम आते हैं।
तो चुनौती बोलेंगे तो किस प्रकार की समस्याएं लोग झेल रहे हैं?
समस्या तो क्या है, अभी जहाँ मैं काम करता हूँ स्पेशली वहाँ सूरत में, वहाँ काफी लोग जो हमारे विश्वासी भाई बहन लोग हैं वो लोग बाहर के हैं, जैसे जो साउथ के हैं और नॉर्थ के भी हैं, हमारे छोटा नागपुर के भी हैं जो काम करते हैं, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई छोटा मोटा नौकरी करता है वहाँ, वो ये लोग हैं और वही लोग आते हैं, और लोकल भी हैं कुछ लोकल हैं जी। तो बहुत सारा वो है जो चैलेंजिंग इश्यूज है। एक तो अभी बहुत तो बड़ा स्केल में हम बात करेंगे तो रोजगार के बारे में भी हम बात कर सकते हैं ना, बहुत सारा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे लोगों के लाइफ को। तो वहाँ से जो लोग बाहर से आके रहते हैं उनके लिए तो काफ़ी चैलेंजिंग है। एक तो नौकरी का सवाल हो जाता है, और अभी का फिलहाल में नौकरी भी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है ना
जी।
तो बहुत सारा चैलेंजिंग, और धर्म के क्षेत्र में भी चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ हम लोग जो काम करते हैं वहाँ बहुत कम लोग हैं हमारे कैथलिक लोग
जी।
ना तो उनके बीच में थोड़ा काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो काम करने वालों के लिए रास्ता मिल जाता है। और मुझे उम्मीद है जो भी अच्छा हम काम करते हैं, अभी इतना साल से हम काम कर रहे हैं तो हमें मतलब कि प्रेरणा और शक्ति मिलती है प्रभु से लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए
जी।
तो चैलेंजेस तो है, चैलेंजेस तो जैसे हम काम करेंगे वैसे हमें प्रेरणा मिलेगा, हमें रास्ता मिलेगा, तो हम उसी रास्ते से उसी प्रेरणा को पाकर हम काम करेंगे
जी। कभी कभी समाचारों में देखने को मिलता है कि कुछ ग्रुप के द्वारा या फिर कुछ लोगों के द्वारा प्रताड़नाएं बोलेंगे या फिर डराया जाता है, चर्च जाते हैं उनको रास्ते में या चर्च में ही जा करके कुछ इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं।
हाँ या ये अभी तो फिलहाल अभी देखेंगे तो सभी जगह जहाँ छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है वो होता है, गुजरात के अंदर में भी, हमारे डायसिस के अंदर में भी ये होता है, जहाँ हम फ्रीली मतलब कि स्वतंत्रता रूप से जाके ये कुछ को काम सब नहीं कर सकते हैं ना पब्लिक में, जब स्पेशली मतलब कि क्रिसमस के टाइम में जो हम जाते थे। लेकिन हालांकि अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे साथ तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन सुनने को आता है कहीं कहीं थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम तो होता है, वो तो वो है, लेकिन मेरे साथ अभी तो हुआ नहीं है। जब जहाँ वो क्रिसमस के समय भी जहाँ सांता क्लोज के साथ हम लोग कैरल सिंगिंग के लिए जाते थे तभी बहुत लोग मतलब कि सपोर्ट किए, और हम दूसरों के घर में भी जैसे कि जो विश्वासी नहीं थे उनके घर में भी जाके हम लोग कैरल सिंगिंग सब किए। इसलिए मेरे साथ पर्सनली तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि यहाँ वहाँ होता है, लोग डरे हुए रहते हैं ये सब ना, लेकिन मेरे साथ अभी तक का अनुभव नहीं हुआ है, बहुत अच्छा अनुभव हुआ है।
तो वहाँ के मतलब ख्रिस्तियों का दूसरे धर्मों जैसे तो उनके साथ में कैसे संबंध है?
हाँ उनके साथ अच्छा है, मेरा तो अभी तक तो अच्छा है, लेकिन कभी मैं भी सुना हूँ कहीं कहीं थोड़ा छोटा मोटा प्रॉब्लम तो हुआ है वैसे बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मैं विटनेस तो नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे साथ तो अभी तक अच्छा अनुभव है। दूसरे धर्म के लोगों के साथ में भी काफ़ी लोग मेरे दोस्त लोग भी हैं, उनके साथ उठना बैठना होता है मेरा, तो उनके साथ मेरा अभी तक तो बढ़िया है।
श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर अभय खलको के साथ वे भेंट वार्ता के दूसरे भाग को सुन रहे थे, और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका ज्ञान दीप, लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, वर्तमान समय गतिशील जीवन और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो गया है। इस समय में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हर व्यक्ति का साक्षर होना बेहद जरूरी है। साक्षरता सभी देश की मूल आवश्यकता है, साक्षरता विकास की आधारशिला है। यह बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार के अवसर, सुरक्षित और अधिक स्थिर समाज की ओर ले जाता है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादातर निरक्षर होने के कारण अन्याय और अंधविश्वास के शिकार जल्दी ही हो जाते हैं। चिट्ठी पत्री के लिए भी दूसरों पर आधारित होना पड़ता है। देश में साक्षरता को जागृत करने के लिए सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य किया है। साथ साथ साक्षरता के प्रसार प्रचार के लिए अनेक योजनाएं भी शुरू की गई हैं। सरकार के साथ सभी को निरक्षरता मिटाने में मदद करनी चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि कम उम्र में यह संभव नहीं था तो एक बड़ा व्यक्ति अपने जीवन के उन्नत चरण में पढ़ना और लिखना सीख सकता है, बस उनके अंदर सीखने की तमन्ना होनी चाहिए। साक्षरता उन्हें विभिन्न विषयों में समान ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करेगी। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका ज्ञान दीप।
बेटी श्वेता, आज स्कूल नहीं जाना है क्या?
जाना तो है माँ, लेकिन आज जरा देर से जाऊंगी।
क्यों, देर से क्यों जाएगी बेटी?
आज से स्कूल में वार्षिकोत्सव शुरू हो रहा है ना, इसलिए।
अच्छा अच्छा, और स्कूल में तेरा काम तो अच्छा चल रहा है ना बेटी?
हाँ माँ, मेरा काम तो अच्छा चल रहा है।
किसी को तुझसे शिकायत तो नहीं है ना? अपना काम ईमानदारी से करना बेटी।
अपना काम तो मैं ईमानदारी से ही करती हूँ माँ। और रही शिकायत की बात, तो मुझसे तो किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे एक लड़के शिरीष से बहुत ज्यादा शिकायत है।
क्यों, क्या बहुत मस्ती करता है?
मस्ती करता तो भी ठीक था, क्योंकि तब उसे सुधारा जा सकता था, लेकिन वह मस्ती ही नहीं करता।
तो फिर ऐसा क्या करता है बेटी कि तुझे उससे शिकायत है?
और क्या करेगा माँ, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता वह।
उसके पापा क्या करते हैं?
यही तो बात है माँ, उसके पापा नहीं है, और बेचारी माँ सब्जी बेचकर उसका और अपना पेट पाल रही है।
फिर ये लड़का आगे जाकर उसकी माँ का सहारा क्या बनेगा?
यही तो मैं भी सोचती हूँ, इसलिए आज से उस लड़के को मैंने ट्यूशन के लिए बुलाया है।
उसकी माँ ट्यूशन फीस दे पाएगी?
नहीं दे पाएगी माँ, इसलिए मैंने उस बच्चे को फ्री ट्यूशन देने का सोचा है।
मुझे खुशी हुई है सुनकर। श्वेता बेटी, ऐसे लोगों के लिए अपने दिल में हमेशा दया रखना।
अरे श्वेता बेटी, ओ श्वेता बेटी,
देख तो जरा धनिया होगी।
देखती हूँ, आओ धनिया मामी। अरे बंसी मामा भी हैं, आओ आओ। हाँ धनिया मामी, और सुनाओ, आज बहुत दिनों के बाद आए हो आप लोग।
क्या करें बेटी, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती।
हाँ धनिया, कहो कैसी हो, सुनाओ अपने हालचाल।
सरला बहन, हालचाल तो हमको श्वेता सुनाएगी पढ़कर। गांव से हरी की चिट्ठी आई है।
अच्छा अच्छा, चिट्ठी पढ़वाने आए हैं आप दोनों।
अब क्या करें बेटी, हम ठहरे गांव के अनपढ़। हरी हफ्ते भर पहले ही गांव गया है खेत और मकान देखने, सो वहाँ का हालचाल लिख भेजा।
लाओ बताओ। सुनो माँ और बापू को चरण स्पर्श और राम राम। मैं यहाँ अच्छा हूँ, आशा है आप दोनों भी खुशहाल होंगे। यहाँ मुन्नी भी अपने ससुराल में ठीक है, और उसके बच्चे और जीजाजी भी ठीक है। फसल आधी कट चुकी है, काम पूरा होते ही लौट आऊंगा। चरण स्पर्श, राम राम।
चलो सब समाचार खैरियत भरे हैं। अरे बंसी भैया, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, फिर ये चिट्ठी पत्री क्यों?
हरी बता रहा था कि वहाँ से सिंगल नहीं मिले।
अच्छा अच्छा मामा, मतलब गांव के आसपास कोई टावर नहीं होगा, इसलिए सिग्नल नहीं मिलता होगा।
हाँ बेटी,
इसलिए चिट्ठी का सहारा लेना पड़ता है।
बस यही एक रास्ता बचा है बेटी।
मुन्नी के कितने बच्चे हैं?
दो, एक छोरा ने एक छोरी।
चलो ठीक है।
अच्छा बहन चलते हैं, जीती रहो श्वेता बेटी।
अरे रुको, चाय बनाती हूँ।
अरे हम मेहमान थोड़ी है, हम तो पड़ोसी है तुम्हारे। फिर आएंगे ना बेटा, ठीक है।
गांव से चिट्ठी आई तो बेचारे अपने गांव और बेटी के हालचाल पूछने चले आए। उनके पड़ोस का रोलू स्कूल चला गया होगा, वरना उनको चिट्ठी पढ़कर भी वही सुनाता है, और उसका जवाब भी वो रोलू से ही लिखवाते हैं।
माँ आपको यह देख सुनकर अटपटा सा नहीं लगा कि कंप्यूटर के इस युग में आज भी कई लोग अंगूठा लगाकर अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर है?
क्या करें, उनके समय उनके गांव में स्कूल नहीं होगा, तभी तो बेचारे अनपढ़ रह गए।
मगर अब तो दोनों शहर में रहते हैं, उनके पास अक्षर ज्ञान और अपने दस्तखत सीखने का अब भी मौका है।
अब इस उम्र में कोई क्या सीखेगा बेटी, और उन्हें कौन सिखाएगा?
माँ कुछ भी सीखने के लिए, खासकर पढ़ाई जैसे विषय के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। और फिर उन्हें कौन सी डिग्री लेनी है, उन्हें तो सिर्फ अक्षर ज्ञान करवाना है और अपना नाम लिखना सिखाना है, जिससे वे अंगूठा टेक कहलाने से बच सकें, बस।
लेकिन उन्हें यह सब सिखाएगा कौन?
मैं सिखाऊंगी उन्हें। उन्हें इस लायक बना दूंगी कि अक्षरों को जोड़ जोड़ कर वे अपने काम की बात और शायद पेपर भी पढ़ लें, अपना नाम लिखने लगे।
मगर ये तो तभी हो सकेगा बेटी, जब इसके लिए उनमें रुचि हो और इसके लिए वो तैयार हो।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है मम्मी, लेकिन इसके लिए मैं उनमें रुचि जगाऊंगी और उन्हें तैयार भी करूंगी।
मेरा आशीष है बेटी कि तू उनके लिए ज्ञान का दीप जरूर जलाए।
हरी जब भी गांव जाता है और वहां से चिट्ठी लिखता है, तो हमें उसे पढ़वाने और जवाब लिखाने के लिए शेलू का सहारा लेना पड़ता है। अब आज वह नहीं था, तो हमें श्वेता का सहारा लेना पड़ा।
अब हम भी क्या करें जी, आंखें होते हुए भी हमारे सामने तो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है ना।
कभी कभी तो दिल करता है कि मैं भी सेलू की तरह स्कूल जाऊं और पढ़ूं।
स्कूल और पढ़ाई, वो भी इस उम्र में।
बात तो तेरी सही है, अब तो हम चाहते हुए भी नहीं पढ़ सकते।
अगर इस उम्र में हम पढ़ सकते ना, तो सबसे पहले तो मैं ही जाती पढ़ने के लिए।
अरे जब इतने साल हमने अंधेरे में बिता दिए हैं, तो अनपढ़ता का ये अंधेरा कुछ साल और सही।
हाँ सही है, अब इस उम्र में हम क्या पढ़ लेंगे और क्या लिख लेंगे, फिर हमें पढ़ाएगा भी कौन, आजकल किस पढ़ लिखे के पास इतना समय होगा जी।
अब तो यह मानकर चल कि हमारे लिए काला अक्षर और बराबर ही रहना है मरने तक। श्वेता बेटी, हम दोनों आ गए हैं।
अब जल्दी से जवाब लिख दे बेटा।
ओह, मतलब मामा मामी चिट्ठी का जवाब लिखवाने आए हैं। खैर वो तो मैं लिख ही दूंगी, लेकिन मैंने एक खास बात के लिए आप दोनों को बुलवाया है।
बंसी भैया और धनिया भाभी, अगर आप दोनों पढ़ने के लिए तैयार हो तो ये श्वेता आप दोनों को पढ़ाने के लिए तैयार है, बोलो।
सरला बहन, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुना तूने धनिया, सुना तूने?
हाँ हरी के बापू, सुना मैंने। हम घर पे नहीं बात कर रहे थे, लगता है भगवान ने उसे पूरा कर दिया।
लेकिन श्वेता बेटी, हम दोनों चाहकर भी तुमसे पढ़ नहीं पाएंगे बेटी।
क्यों बंसी मामा, ऐसी क्या बात है?
बेटी अब इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करना क्या शोभा देता है?
पढ़ाई लिखाई करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। आप दोनों की अगर अक्षर ज्ञान और अपना नाम लिखना सीखने की इच्छा है तो मैं आप दोनों को सिखा दूंगी। हम टाइम निकाल करके यह भी फिक्स कर लेंगे कि आप दोनों मेरे यहाँ या मैं आप दोनों के यहाँ पढ़ाने आऊँ।
बेटी तुम्हारा ये हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा।
हाँ बेटी।
तो बंसी भैया और धनिया भाभी, अब अपनी पढ़ाई की तैयारी कर लेना।
जरूर बहन जरूर। श्वेता बेटी, अगर तुम्हारी तरह हर पढ़े लिखे लोग अपने आसपास के हम जैसे अनपढ़ों को अक्षर ज्ञान और नाम लिखना सिखा दे तो हमारे देश में शायद कोई भी अनपढ़ ना बचे।
अब तो मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है हमारी अनपढ़ता का दूर होता अंधकार।
श्वेता बेटी, तूने ज्ञान दीप की जो लौ जलाई है उसे ऐसे ही जलाए रखना।
हाँ माँ।
ज्ञान दीप। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे नुपुर दीक्षित, नलिनी गहलोत, समता खान चंदानी और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
कदम दर कदम पोप लियो 14वें दुनिया को अपना परिचय देते हैं।
आप सबको शांति मिले
और उसी क्षण से उनके कदम हमारे भी बन गए हैं।
मैं आपके पास एक भाई के रूप में आया हूं, जो आपके विश्वास और आपके आनंद का सेवक बनना चाहता है।
संत पेत्रुस की दान राशि में अपने योगदान के साथ संत पिता के कदमों का ठोस रूप से समर्थन करें। आप उन्हें दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने में मदद करेंगे और जरूरतमंद भाइयों और बहनों की सहायता में हाथ बटाएंगे।
भाइयों बहनों, यह प्रेम का समय है।
पोप लियो 14वें के कदमों का समर्थन करें। संत पेत्रुस के अनुदान राशि में योगदान दें। संतपेत्रो.va के साइट www.obolo पर जरूर जाएं।